ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఆజ్ 5 తారీఖ్ కి ఏ మురళీ హై ఔర్ బాబా నే ఆజ్ చారో సబ్జెక్ట్ లియే హుయే హై ఇస్ మురళీ మే. జ్ఞాన్ భీ హై, యోగ భీ హై, ధారణా కి పాయింట్స్ భీ బాబా నే ప్రాక్టికల్ మే హమే క్యా క్యా ఫాలో కర్నా హై వో బతాయా హై, ఔర్ సేవా భీ హమే కైసే కర్నీ హై వో భీ బాబా నే అచ్చీ తరహ సే సమ్జాయా హై. బాబా బహుత్ ప్యార్ సే బాప్ కే రూప్ మే, టీచర్ కే రూప్ మే ఆజ్ హమకో అచ్చీ తరహ సే సమ్జా రహే హై. జ్ఞాన క్యా, యోగ క్యా, ధారణా క్యా ఔర్ సేవా క్యా, అబ్ సునతే జానా మురళీ మే బాబా నే క్యా క్యా ధారణాయే కర్నీ హై. ఛోటీ బడీ బాతే భీ బాబా నే బహుత్ ప్యార్ సే సమ్జాయీ హై. ఇర్షా నహీ కర్నా హై. తో దేఖో బాబా నే ఏసే బహుత్ ఇమాందార్ బచ్చే కిస్కో కహా జాతా హై, యోగ క్యా హై, యోగ బాబా కో కైసే లగానా హై సారా బాబా నే సమ్జాయా హై. సేవా కైసే కర్నీ హై, ఖూబ్ ప్రదర్శనీ కరో, మేలా కరో, అచ్చీ తరహ సే బచ్చో కో సమ్జానా హై, ఉస్కీ ప్రాక్టీస్ కర్నీ హై. జ్ఞాన కే లియే బాబా నే బహుత్ కుచ్ ఆజ్ సమ్జాయా హై. మీఠే బచ్చే, తుమ్ అపనే యోగ బల్ సే, आप लिखते जाना अलग अलग 4 पॉइंट्स, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, कौन सी कहां आती है. तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो. तुम प्रकट हुए हो किस लिए, इस रूहानी सेवा के लिए. प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या क्या होंगी. सुनते जाओ, आज बाबा ने नई बताई है. ईमानदार बच्चे, ईमानदार बच्चे कभी भी अपने भूल को छिपाएंगे नहीं. बाबा ने यहां ही ओम शांति भवन में सब टीचर्स बहने थी, एक बार बाबा ने सब टीचर्स बहनों को बुलाया और पूरा हॉल ये फुल हो गया था बहनों से. तो बाबा ने लास्ट में क्या कहा, मेरे आज्ञाकारी, मेरे वफादार, मेरे ईमानदार बच्चों को याद प्यार. बाबा ने जितना नंबर वार, ये खास बाबा ने बोला था, मेरे को याद आ रहा है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार. तो बाबा ने देखो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितना जो आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमानदार है, ईमानदार है, ऐसे बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिया. तो हमें ईमानदार बनना है, फौरन बाबा को सुनाएंगे, कोई भी भूल छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुना देंगे. वह बहुत बहुत नीर अहंकारी होते हैं, उनकी बुद्धि में सदा यह ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके दूसरे करेंगे. दूसरा, वह किसी की डिस सर्विस का कभी गायन नहीं करते. फलाना ऐसा है, ऐसा करता, वैसा करता, जो भी, पर चिंतन शॉर्ट में नहीं करेंगे, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं. वह किसी का अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते. किसी का भी अवगुण देख करके अपना माथा खराब नहीं करेंगे. गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रीत, रूहानी बाप क्या देते हैं? धीरज देते हैं। जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना, कोई बीमार पड़ता होता है तो उनको आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो कौन है? बेहद का बाप है जो बच्चों को बेहद का धैर्य देते हैं, धैर्य दे रहे हैं। बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रह औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना, चाहे बहन है चाहे भाई है, आत्मा से सब क्या है? शक्तियां है। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह गोप माना भाई लोग, यह गोप भी आत्माएं है, शक्ति है। यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इससे कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह शक्ति लेते जाओ, याद में रह शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा योग के ऊपर समझा रहे हैं, याद से योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिमान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नई दुनिया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को क्या करते हैं? पलटाते हैं। अंगुले से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं कि बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएंगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, अभी ज्ञान की बातें, बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। प्रदर्शनी समझाना भी आना चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते हैं बैठ करके सीखो। है बहुत सहज, बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। मुंबई में ही सबसे पहले प्रदर्शनी का आयोजन किया था, तो बिरला क्रीडांगण में भी पहले 64-63 में ऐसे प्रदर्शनी की हुई थी पहली। तो उसके पहले भी एक जगह किया था, ये दूसरी थी। तो हमको ट्रेनिंग देते थे, हम लोग सब छोटे छोटे थे, लेकिन हमको बड़ी बहनें ट्रेनिंग देती थी कि आपको कैसे प्रदर्शनी जो है वो समझानी है, शिव बाबा का परिचय, आत्मा का परिचय, शिव शंकर में क्या अंतर है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे एक 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 चित्र रखे हुए थे और सीढ़ी का चित्र, ऐसे सब रखे हुए थे और हमको समझानी दी जाती थी। और फिर उस अनुसार हम लोग भी, इतने लोग आते थे, तब टीवी भी इतना नहीं था, लोग इतने प्रदर्शनी देखने आते थे, बात नहीं पूछो। और जब क्रॉस मैदान में मेला किया तब तो लाखों लोग, तो मेले में भी कैसे समझाना। पहले पहले वहां निर्भय भाई भी मुंबई में रहते थे उस समय, तो सबको ट्रेनिंग देते थे, रतन मोहिनी दादी सबको ट्रेनिंग देती थी आप लोगों को कैसे समझाना है। तो हर एक के कर्मों का हिसाब है, कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वह कहती है इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूट जाती थी, फ्री बर्ड होती, कन्याएं फ्री बर्ड्स है। परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है, स्त्री को पुरुष बच्चे आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रसम रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है, अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है, कहती है हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगी, सभी अपने प्रांत के लिए कितनी, अपना स्टेट के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे, यह भी न रहे। तुम्हें किसी, अभी धारणा की बात है, अभी धारणा की, बाबा ने सारी मिक्स मुरली, ज्ञान योग धारणा सेवा सब लिया है इसमें, अभी धारणा। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं, सर्विस नहीं किया माना सेवा नहीं किया तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता है, बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकता है। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का, सेवा का बहुत शौक है, जरा भी देह अभिमान नहीं है, कोई कोई तो बड़े अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है, कभी भी किसके, फिर दाना की पॉइंट है, कभी भी किसके अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। क्या नहीं देखना चाहिए? किसी के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। क्या नहीं देखना चाहिए? कि फलाना ऐसा है, यह करते हैं, आजकल आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं, फलाना यह करता है ऐसा है, अरे तुम अपनी सर्विस करो। बाबा बड़ा प्यार से समझा रहा है, तुम अपनी सेवा करो, ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, बाबा के पास चारों बाजू से सब समाचार आते, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख महिमा भी करते हैं, बच्चों में सर्विस का जोश होना चाहिए। सुना आज बाबा कह रहे हैं बच्चों में सर्विस का क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है, पहला नंबर तो हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं, किसका? बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं, किसका? सर्विस का, तरीका बाबा ही हमें समझाते हैं। कभी भी, वापस बाबा कह रहे हैं, कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। पहले बोला कभी भी ईर्ष्या नहीं करो, नंबर टू बाबा अवगुणों को चित्त नहीं धरो, नंबर तीसरा बाबा कहते हैं कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। ऐसे बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को माया कहां से पकड़ती है? कभी तो बाबा कहते हैं, आज तो बाबा ने कहा है माया नाक से पकड़ती है, कभी बाबा कहते हैं माया कान से पकड़ती है, कभी बाबा कहते हैं दुबन के अंदर फंस जाते हैं तो चोटी पकड़ के उठाते हैं। तो माया अलग अलग प्रकार से पकड़ती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेंगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए, बाबा को भी राय देने वाले हैं। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेद देते हैं। कहावत है ना, कौन सी कहावत है याद है? चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझता क्या है? मैं बड़ा व्यापारी हूं। यह एक कहावत है। ये तो यह नहीं समझते हैं कि हम डिससर्विस करते हैं। भूले तो बहुतों से होती रहती है, कभी अवस्था ऊंच कभी अवस्था क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, नीच। यह तो चलता आया है। हरेक अपनी अवस्था को देखे, हरेक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं, कोई तो अपनी भूले छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा नीर अहंकारी पना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा ख्याल ये रहना चाहिए। कौन सा ख्याल रहना चाहिए? हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए। बोलो कौन सा ख्याल रहना चाहिए बताओ? जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है तो बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे, दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी क्षुद्र से ट्रांसफर हो ब्रह्मा मोक्षवंशावली ब्राह्मण हो गए, जिनमें पांच विकार है वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो देवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहां है नहीं, देवताएं होंगे सत्युग में। तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए, फिर बाबा प्रदर्शनी पर आए, फिर बाबा ज्ञान को समझा रहे हैं। तुम बच्चों अभी समझाने के लिए तुमको चांस मिलता है। प्रदर्शनी में समझाते रहो, प्रदर्शनी करते रहो, प्रदर्शनी में समझाते रहो, आपकी प्रजा बनती जाएगी वो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही क्या होता है, रेगुलर पढ़ने से ही क्या होगा, रेगुलर पढ़ने से क्या होगा, दिलीप भाई बताओ, रेगुलर पढ़ने से क्या होता, रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। सुना, बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना है अच्छा, अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते, जिसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है बाबा कहते उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी क्या करते, बाप को याद नहीं करते, न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठ के चुटके खाते हैं। बाबा हमेशा कहते थे हमको, हिस्ट्री हॉल में बाबा योग कराते थे, बाबा कहते थे आज बाबा 2 बजे सबको सर्च लाइट देने के लिए आ जाएगा, और बाबा हम तो पांव नीचे रख के ऐसे बैठते हैं, लेकिन बाबा तो पद्मासन में टटार ऐसा बैठ जाते थे। और बाबा कहते थे कोई भी झुटका नहीं खाना चाहिए, बाबा स्ट्रिक्टली कहते थे कि कोई भी झुटका नहीं खाए। और हम लाइन में सब छोटे छोटे थे, हमको योग किया इतना नहीं मालूम, पर हम भी बैठ जाती थी, सारा हिस्ट्री हॉल भर जाता था। और बाबा की 2 आंखें 2 बल्ब जैसी, मैंने कई बार सुनाया ये अनुभव, ऐसा आज भी हमको योग में जब बैठते तो वो सीन जो है ना वो याद आता है। तो बाबा हमेशा योग कराते थे, 2 से 4 कराएंगे रात को, फिर अमृत वेला हो जाता था। तो उठते बैठते क्या कर, बैठने उठते हैं तो बैठने से फिर झुटका खाते रहते हैं। याद करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं, उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात, माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होंगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वह तो छोटे बच्चे भी सीखकर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है। यह बच्चों को नशा नहीं रहता है, माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाबा कहते हैं और किसको देखो ही नहीं, अपनी सर्विस में लगे रहो। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं, कोई देह अभिमान में आकर समझाते हैं यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की ही निंदा करते तो क्या हो जाता है, औरों की ही निंदा करते रहते तो टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना, कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना है। फिर से बाबा धारणा की बात ले रहे हैं, हमें क्या नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना है, तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, प्रदर्शनी ब्रह्मा द्वारा मनुष्य, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा तो यहां होगा ना, कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूं, तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा कहेंगे फुर्सत नहीं मिलती, नहीं, टाइम निकालना है। बाबा कह रहे बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। बाबा कोई प्रेरणा नहीं देता है, समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी तो कोई बात ही नहीं है, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं, ऐसे थोड़ी कहते आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ। वह है पतित पावन, बाप पावन था ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर के क्या बनाती है, पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने, कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उनकी महिमा भी होती। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इस सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी, यह राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी हम गृहस्थी, फिर यह हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ, मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता शांति सुख का सागर है, तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़ी सिर्फ देवताएं कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपका आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे, बोलो हम क्या करेंगे, श्रेष्ठाचारी। पीछे वाले बोलो, तीन बैठे हैं ना कुर्सी में, बोलो भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना, कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे आएगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए, संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए, खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहां हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय तो कसम कशा तो कर नहीं सकेंगे। जब लड़ाई के समय तो कसम कशा होंगी, उस समय बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले से ही याद में रहो। उस समय तो बहुत आफतें आदि आती रहेंगी, इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ, जितना हो सके गैलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है, यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं, निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है, बाबा कहते हैं बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर, परमधाम को क्या करना है, खाली टच करना है। मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त बनेंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम को सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको मिलता नहीं, ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। एक सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य में मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। सुना, बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। बाबा ने पहले क्या कहा, ईर्ष्या नहीं करनी है। नंबर टू में क्या कहा, अवगुण किसी के चित्त पर नहीं धरना है। और क्या कहा, और चौथा बाबा कहते हैं बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। बाबा का ये मीठे बच्चे, मुरली शुरुआत करता है तो भी बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे। बाबा बीच में भी कहेगा मीठे बच्चे, मीठा बनना है। लास्ट में बाबा यार प्यार देगा तो भी कहेगा मेरे मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार। इसका मतलब हमारे लिए ये क्या हो गया, मंत्र हो गया कि हमें मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मीठा बनना है, हम सब पुरुषार्थ करते हैं। स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए। क्रोधी नहीं बनना, दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे है, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूं, इसमें हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, अगर सर्विस नहीं की, बाबा क्या कहते सुनो, अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूं बच्चों को फुल बादशाही देने, फुल बादशाही देने। तो हिम्मत रख, हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता, बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है। दधीची ऋषि मिशल हड्डियां भी देनी है, कहते भी है फिर कहां दे अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारगति दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं तो अपने तरफ तरसाना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, बाबा राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु क्या बनना है? माया के तूफान तो बहुत आएंगे परंतु महावीर बनना है। क्या बनना है? महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो रूहानी प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है, किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है। दूसरा है, ईमानदार और निरअहंकारी बन, ईमानदार और निरअहंकारी बन, सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है, कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान है, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने से अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन में भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देंगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ, सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो तो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो, प्रकृति को भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिखाएंगी। ओम शांति।
ओम शांति।
एक मिनट बोलूं, अभी अगस्त मास चल रहा है, हमारी दादी का दिन आएगा, तो दो तीन बातें दादी की सुना देती हूँ। और नीचे शांतिवन में मुरली सुनाई तो वहाँ हमको एक दिया पेज के दादी का सुनाओ, तो दादी के बारे में एक एक वाक्य सुनाते हैं। तो मेरे को याद आया, ओम शांति भवन में बैठे हैं हम लोग, अभी ये 83 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो कितने साल हो गया सबको मालूम है, कितने साल हो गया गिनती करो। हाँ तो अभी रिपेयरिंग हो रहा है, तो जब बन रहा था तो हमारे दादी जी प्रकाशमणि बहुत उत्साह उमंग में थे, और जब ओम शांति भवन में बन रहा था और दादी ने नक्की किया कि 6 फरवरी 83 में इनॉग्रेशन करना है, आप 15 दिन पहले भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, अभी तो इसमें बहुत काम पड़ा है बहुत काम पड़ा है। और जब ट्रायल किया तो इको पढ़ने लगे, वो सब मैंने कहानी ये कही है पार्लियामेंट, पर फिर भी जिन्होंने नहीं सुनी, तो यहाँ सब एक एक डब्बे एक एक खड्डा खोद दिया था, माना बॉक्स जैसा, ये सब जगह हमको याद है, ये सब जगह। तो इको पढ़ने लगा, तो दादी ने वैसे तो सारे जितने सेंटर थे उसमें से जितने कड़िए थे, जितने टेलर थे, जितने कारपेंटर थे, जो जो जहां जहां जो जो जिस बात की जरूरत थी सबको बुला लिया था, और सब एक काम में लगे पड़े थे। तो सीढ़ी भी नहीं हुई थी, सब कड़िए भी आ गए, सीढ़ी बनाने लगे, सब कुछ दादी खुद खड़ी थी मेरे को याद है। और ये रिंग रोड बना रहे थे ना, तब बहुत डिस्कस, एक झाड़ पेड़ था तो बहुत काटना भी नहीं है दादी ने कहा, और झाड़ को नहीं काटना है, और रिंग रोड ये जो बनाया है ना वो दादी का आइडिया था, ऐसा रिंग रोड बनाओ। तो दादी ने मेरे को भी फोन किया, मेरे को भी कहा कि ये इको पट्टा है ओम शांति भवन में तो बहुत, तो तुम कोई साउंड इंजीनियर ढूंढ लो, तो कैसा भी करके जल्दी लेके आओ, इनॉग्रेशन का टाइम हो गया है। तो हमने अपना लक्ष्मीकांत भाई इंटीरियर जिन्होंने किया है पार्ला में इस काम, तो उनको पूछा मैंने, तो बताया जाल मिस्त्री, ऐसे तो बहुत तीन लोग है इंडिया में खाली, पर आप जाल मिस्त्री से बात करो। तो हमने जाल मिस्त्री को फोन किया, तो बोला मेरे को पार्टी कौन है, मैंने कहा कोई पार्टी तो नहीं है पर हम बहने हैं, पर आप आओ हमारे सेंटर पर एक बार पार्ला में आओ। तो वो आ गए, वो आए तो हम सीधा उसको बाबा के रूम में लेके गई, अभी आप लोग तो सब वहां से ही आए हो, तो जो डाइनिंग रूम थे वो बाबा का रूम था उस समय, तो बाबा के रूम में लेके गई। उसको इतना अच्छा अनुभव, बाबा को जिनसे कार्य कराना होता है बाबा ही उसको टच करता है, तो उसको टचिंग हो गई, शांति का अनुभव हो गया। तो कहता है, वो तो पारसी थे सीधा ही बोलते थे, बोला मेरे को भी पैसा नहीं चाहिए, चलो हम कल ही जाते हैं, कल ही तैयारी करो। तो हम दूसरे दिन यहाँ आ गए, आए तो इनको चिंता हो गई, अरे इनके दादी भी लेडीज है, हेड है संस्था की, हमारा सुनेंगे कि नहीं, ये क्या खड्डे खड्डे खोद दिया, इस तो बाजू में ग्राउंड में ये लोग अपना हो कर लेते थे, ग्राउंड में ही प्रोग्राम, ये क्यों बनाया इतना। तो मैंने कहा दादी का आउटलुक बहुत ब्रॉड है और आपका सब सुनेंगी दादी हमारी। तो उन्होंने दूसरे दिन दादी को यहां बैठ के ही, मेरे को याद है यहां ही बैठे, और उसने ड्रॉइंग किया पूरा ड्राइंग करके। उस समय प्रेमचंद भाई हमारे पास फिलिप्स कंपनी में काम करते थे, तो प्रेमचंद भाई को बोला तो सारा लाइट और साउंड का सामान उन्होंने तुरंत ही तुरंत भेज दिया, और इन्होंने ऐसी साउंड सिस्टम बनाई जब बाबा आए, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई, तो लास्ट बैठा हुआ व्यक्ति भी, बाबा का तो विस्परिंग साउंड है ना, आप कैसे हो साहब, तो वो भी आवाज लास्ट वाले को भी क्लियर सुनने में आया। तो कमाल है, देखो दादी का, दादी हर बात, छोटी बात बड़ी बात, जब ये ओम शांति भवन बना रहे थे तब दादी खुद खड़ी रह करके देख रही थी। ऐसे ही दादी ने जब ज्ञान सरोवर बनाया और शांतिवन बनाया, तो हर एक को बोला। यहाँ भी ये ओम शांति भवन में भी हमारे नैरोबी में, तब अफ्रीका में सेवा शुरू हुई थी, तो नैरोबी के दो भाई थे, एक का नाम रति भाई था, एक का नाम छगन भाई था, दोनों भाई थे। तो उन्होंने बोला दादी आप किसी से नहीं लेना पैसा, हम लोग ही करेंगे, हम लोग, तभी ये 9 लाख का कुछ एस्टिमेट था मेरे को याद है, बोला हम लोग ही बना देंगे। परंतु दादी 83 की बात है, दादी ने कहा नहीं, पूरी पूरी तलाव सबका लगना चाहिए, सबका उसमें होगा तो सेवा में सफलता मिल जाएगी। तो इसलिए सबका लिया, दादी ने उनको मना कर दिया। तो ऐसे ही दादी ने देखो, चाहे ज्ञान सरोवर बनाया, चाहे शांतिवन बनाया, दादी ने खाली बोला सबको एक एक रुपया डालना है। हमारे भद्रेश भाई यहाँ बैठे, उनका बच्चा था छोटा, वो भी आके पार्ला में बाबा के बॉक्स में डालता था, तो एक एक रुपया किसी के लिए बड़ी बात नहीं थी। चलो उस समय 4-5 लाख होंगे, चलो 3 लाख तो हो ही जाता था। आज मास में 1 करोड़ जितना हो जाएगा, तो 10 मास में ये प्रोजेक्ट हमारा ज्ञान सरोवर का 10 करोड़ का पूरा हो गया। तो दादी को कैसे बाबा टच करते थे, और दादी का तो हमने बहुत, हमारे हॉस्पिटल में भी लास्ट में दादी बाबा की हॉस्पिटल में भी 5 मास रही थी, तो बहुत दादी से अनुभव किए। दादी बहुत मीठी थी, समझो यहाँ बैठे हम लोग मीटिंग में आते थे बैठते थे, हम बीच में वहां बैठी होंगी, पर यदि हमारी नजर दादी से मिल जाएगी, दादी तुरंत स्माइल करेगी। आप कहां भी फोटो देखो, शांतिवन में देख लो, चाहे इधर देख लो, जहां भी दादी के फोटो है, दादी का फेस हमेशा स्माइलिंग फेस, दादी हर्षित मुख, सदा दादी खुश मिजाज, खुशनुमा दादी रहती थी। सारे जर्नलिस्ट लोग जब ओम शांति भवन खुला आए तो बोला दादी आपको टेंशन नहीं होता है, तो दादी कहती आप इतने लोगों को संभालते हो, इतने सेंट्रल संभालते हो, इतना ये करते हो। दादी ने कहा नहीं, मेरे को नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा ये समझती हूँ करण करावन हर बाबा है, मैं आत्मा तो निमित्त आत्मा हूँ। दादी ने हमेशा अपने आप को निमित्त समझा, इसलिए दादी कहती थी दादी का कहना ये है, दादी का सजेशन ये, दादी अपने को ऐसे ही बोलती थी, दादी ये करना चाहती है, हमेशा दादी करके ही दादी बोलती थी, न्यूट्रल होके ही दादी बोलती थी। ऐसे ही दादी को जब हॉस्पिटल में एक बार मैं ज्वेल ऑफ लाइट दादी की बुक्स थी बता रही थी, दादी आपने ये भी किया, आपने ओम शांति भवन बनाया, आपने ये शांतिवन सब बताया, मंडेला से मिले, इसको मिले, उसको मिले, बता रही थी, फिर किताब मैंने बंद कर दिया सारी बता के। तो दादी ने तुरंत, दादी कम बोलती थी, तो दादी ने ऐसे किया, माना क्या अर्थ, करण करमन हर बाबा है, मैं तो निमित्त आत्मा हूँ। ऐसे दादी की बहुत बातें हैं। हम अगस्त मास में ऐसे तो दादी को हमेशा ही याद करते हैं, दादी का चेहरा ही ऐसा था, वही सेवा कराता था दादी। एक बार हम यहाँ चिदंबरम को लेके आई थी, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जैसे अब्दुल कलाम वैसे चिदंबरम भी बहुत बड़े वो चेयरमैन थे इसके, बाबा एटॉमिक एनर्जी के। तो दादी वो साइंटिस्ट था बड़ा, तो दादी ने उसको इतना अच्छा समझाया कि वो खुश हो गया कि साइंस क्या है और साइलेंस बल क्या है। वो दादी ने साइंटिस्ट को साइंटिस्ट की तरह से मैं देखती रह गई, दादी उसको समझाई जा रही थी, साइंस और साइलेंस दोनों पैरेलल जा रहा है, फिर कैसे साइलेंस की शक्ति काम आती है, बहुत अच्छी तरह दादी उसको समझा रही थी। तो दादी को हमने बहुत नजदीक से देखा, दादी के साथ हमको अंग संग रहने का बहुत मौका मिला, क्योंकि कभी भी दादी कहाँ भी जाती थी तो मुंबई में ही दादी आते थे, अपने पिले पार्ले में ही आते थे, तो हमारा बहुत सौभाग्य रहा। ओम शांति।